और हमारे मध्य उपस्थित हैं मीडिया जगत के दैदित्यमान नक्षत्र, जिनका मैं चाहूंगी बहने आकर स्वागत करें और आप सब करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। हमारे मध्य उपस्थित हैं भ्राता दीपक चौरसिया, एडिटर इन चीफ इंडिया न्यूज। बहनों से निवेदन है आप बैज और गुलदस्ते द्वारा स्वागत करें। भ्राता सुधीर चौधरी, एडिटर इन चीफ जी मीडिया ग्रुप। मिस्टर संजय कुलश्रेष्ठ, एडिटर इन चीफ न्यूज नेशन।
Citation for the media persons who are present on the dais. We greatly appreciate you for your sincere and dedicated media services in promoting the true spirit of journalism. We sincerely acknowledge your significant roles in informing, educating, and enlightening the masses about the various affairs of the world. We also felicitate you for your pragmatic contributions you have made for the welfare, development and progress of the people and country as a whole and the world at large, which are quite relevant and will go a long way in shaping the society and making the world a better place. Let incorporeal Godfather Supreme Soul Shiv Baba, angelic Pita Shri Brahma Baba, the corporeal founder of the Brahma Kumaris movement, and the divine family of Brahma Kumaris shower their blessings upon you for your long, healthy, happy and blissful life. Om Shanti.
आप लोग देख रहे हैं हमारे भाइयों का अभिनंदन हो रहा है। I would like to invite now Mr. Deepak Chaurasia। आप आए और अपने शुभ संकल्प हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करें। भ्राता दीपक चौरसिया, एडिटर इन चीफ इंडिया न्यूज। लगता है दीपक जी शायद व्यस्त हैं। कैन आई इनवाइट ब्रदर सुधीर चौधरी? ब्रदर सुधीर चौधरी, 2 मिनट आप बोलेंगे, आइए। इनका हम भरपूर तालियों से अभिनंदन करते हैं। रोज आप इनको जी न्यूज पर देखते हैं।
नमस्कार. मंच पर गणमान्य व्यक्ति जो भी मौजूद हैं, सबको मेरा प्रणाम. आप सबको मेरा प्रणाम. स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है और मैं कोई भाषण लिखकर तो नहीं लाया हूं, तो जो मेरे मन में इस वक्त जो भाव है वही आपके साथ मैं शेयर करूंगा. यहां आने के बाद एक ऐसी अनुभूति हो रही है, मैं पहली बार यहां पर आया हूं और एकदम ऐसा लगा कि किसी बाहरी दुनिया से हम लोग यहां पर आए हैं. एकदम अलग दुनिया है और ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी बहुत गरीब देश से आए हैं और किसी अचानक से किसी अमीर देश में आ गए हैं. तो स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है तो यहां आने के बाद मैं आपके साथ बहुत ईमानदारी के साथ ये स्वीकार करूंगा कि स्पिरिचुअलिटी के मामले में मेरे जैसे जो लोग हैं हम लोग काफी, मैं कहूंगा, बिलो पॉवर्टी लाइन है. आप सबके मुकाबले इतने ज्ञानी लोग यहां बैठे हैं मंच पर. इन तमाम लोगों के सामने मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या कह सकता हूं, मुझे लगता है मैं बहुत छोटा हूं उसके लिए. लेकिन मीडिया में काम करने के नाते आपके साथ अपने अनुभव मैं जरूर शेयर कर सकता हूं. और इतने साल मीडिया में काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारे देश में हमारी सेना है जो हमारे देश की रक्षा करती है, तो हम कहते थे कि हमारी इंडियन आर्मी है जो हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करती है. उसके बाद एक नया शब्द आजकल यूज होने लगा है, ट्विटर सेना, यानी सोशल मीडिया की सेना, वो भी बहुत एक्टिव होती है आजकल. लेकिन यहां आने के बाद ऐसा लगता है कि हमें एक देश में इस वक्त एक स्पिरिचुअल सेना की बहुत जरूरत है, एक स्पिरिचुअल आर्मी. हमारे देश में जो मिसिंग है वो है कि हमारे पास एक बहुत सशक्त स्पिरिचुअल आर्मी नहीं है, जो कि हमने अपने बॉर्डर्स की रक्षा कर ली, उनको सेफ कर दिया, हमने अपने बाकी चीजों के बारे में सोच लिया. लेकिन इस देश में जो 130 करोड़ लोग हैं उनके मनोबल की रक्षा कौन करेगा, उनके चरित्र की रक्षा कौन करेगा, और उनके मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं उसके बारे में कौन सोचेगा और उनकी रक्षा कौन करेगा. कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी जब आती है तो वो आपको सुख सुविधाएं देने की कोशिश करती है, अपने वोटर्स के साथ वादे करती है, नौकरियां दी जाएंगी, आर्थिक रूप से मदद की जाएगी, बिजली, पानी, सड़क दिया जाएगा. लेकिन हमारा जो माइंड है और हमारे जो विचार हैं उस पर मुझे लगता है कि अभी किसी ने भी काम करना शुरू नहीं किया है. और आज मैं यहां, जब यहां आया तो मुझे ऐसा लगा कि यहां से एक बहुत बड़ी सेना बनाई जा रही है जो कि इस क्षेत्र में काम करेगी. और मुझे बहुत खुशी है, आने वाली जो दुनिया है वो शायद रुपए पैसे से नहीं चलेगी, वो विचारों से चलेगी. और मीडिया उसमें एक बहुत सशक्त भूमिका निभा सकता है, क्योंकि मीडिया आपके विचारों को हिट करता है, आप जो देखते हैं उन विचारों को प्रभावित करता है मीडिया. इसलिए मीडिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी. और यहां जब मैं मंच पर बैठा हुआ था तो मुझे लगा, अपनी जिम्मेदारी का और ज्यादा मुझे एहसास हुआ कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के कंधे पर है और कई बार हम उस जिम्मेदारी को ठीक से निभा नहीं पाते हैं. अगर आप एक मीडिया के न्यूज रूम में जाएंगे तो आपको एक बहुत ही नेगेटिव माहौल मिलेगा. और इसीलिए मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि मैं अपने जीवन के हर रोज 24 घंटे में से कम 13-14 घंटे तो न्यूज रूम में बिताता हूं और वहां माहौल बहुत नेगेटिव होता है. दुनिया भर के मीडिया में अगर कोई दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में कितने लोग मारे जाते हैं, जितने ज्यादा लोग मारे जाते हैं वो उतनी बड़ी हेडलाइन बनती है, उसको उतनी ज्यादा तवज्जो दी जाती है, उसके ऊपर उतना ज्यादा काम किया जाता है. और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब मैं यहां आया, इस हॉल में हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, तो एक जो आपने देखा होगा कि आप किसी को मिलते हैं तो आपको नेगेटिव वाइब्स आते हैं और कहीं किसी जगह पर आप जाते हैं तो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं. अब आप अंदाजा लगाइए कि जब मैं इस हॉल में आया तो मुझे इतनी जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी फील हुई और मुझे लगा कि जिस जगह पर इतने हजार पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव विचारों वाले अच्छी आत्माएं जहां मौजूद हों, वो जगह कितनी पवित्र होगी और यहां से कितनी सारी एनर्जी मेरे जैसे जो लोग हैं, मैं बार बार हवा में से उस एनर्जी को अपने अंदर इनहेल करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि और कोशिश कर रहा हूं कि ये जितना मैं इनहेल करके ले जाऊं यहां से, ये ज्यादा से ज्यादा दिनों तक मेरे अंदर चले, मेरे मस्तिष्क में चले जब मैं दिल्ली वापस पहुंचूं। तो सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे यहां आने का मौका मिला। मुझे पता नहीं था मैं आज कहां जा रहा हूं, क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा मैं पहली बार यहां पर आया हूं, लेकिन आने के बाद बहुत खुश हूं, बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूं यहां आने के बाद। चुनौतियां हमारे देश में बहुत हैं और कुछ एक जो विचार जो मुझे बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में चलते रहते हैं वो ये है कि इस वक्त भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारे देश में लगभग आधी जनसंख्या इस वक्त 25 वर्ष के आसपास है और 2020 तक हम और भी ज्यादा युवा हो जाएंगे। जिस देश में करीब करीब 60 करोड़ लोग युवा हों, तो आप सोच सकते हैं कि युवाओं में कितनी ताकत होती है, कितनी एनर्जी होती है और उनके विचारों में कितनी कितनी ताकत होती है कुछ भी करने की, पॉजिटिव करने की और नेगेटिव करने की। डर यहां लगता है कि अगर आपके पास 50-60 करोड़ यूथ है और अगर वो यूथ स्पिरिचुअलिटी से दूर चला गया, अगर वो पॉजिटिव एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी की तरफ चला गया, अगर वो संतुष्ट होने की बजाय असंतुष्ट होने लगा, अगर वो डिस्ट्रक्टिव होने लगा, तो जिस ताकत को हम ये समझते हैं कि हम इस ताकत के बल पर आने वाले वर्षों में सुपर पावर बन जाएंगे, बहुत बड़ी शक्ति बन जाएंगे दुनिया की, वो पावर असल में वो ताकत एक ज्वालामुखी बन जाएगी अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो। और यही कारण है कि इतनी बड़ी ताकत के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं और हमें कोशिश ये करनी होगी कि उस ताकत को हम कहीं ज्वालामुखी किसी भी कीमत पर ना बनने दें। और ये काम में ऐसी संस्थाएं बहुत बड़ा रोल निभा सकती हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। इसलिए जहां आज हम खड़े हैं, हम लोग, आप लोग, आप लोगों को सशक्त करने की जरूरत है, आप लोगों को और ज्यादा ताकत देने की जरूरत है। जो दादी माँ है यहां इतना अच्छा काम कर रही हैं, उनको और ज्यादा ताकत देने की जरूरत है। मैं अभी आते हुए बहुत सारी चीजें अपने फोन में पढ़ रहा था और सोच रहा था कि मैं जब आऊंगा आपके सामने तो मैं क्या बोलूंगा। कैमरे के सामने बोलना यहां बोलने के मुकाबले मुझे काफी आसान लगता है। कैमरे के सामने मैं हर रोज 1.5 घंटा बोलता हूं, लेकिन कभी कोई टेंशन स्ट्रेस नहीं रहा और कभी मुझे ये सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं आज क्या कहने वाला हूं। अपने आप चीजें दिमाग में आती चली जाती हैं। लेकिन जब यहां आ रहा था मैं, तो पूरे रास्ते भर ये सोच रहा था कि क्या बोलूं, किस चीज के बारे में बात करूं। डीएनए टेस्ट तो हम हर रात को करते ही हैं जी न्यूज पर, लेकिन आज क्या किया जाए, क्या नया किया जाए। और मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि क्या नया किया जाए। 1.5-2 घंटे मैंने बहुत माथापच्ची की, बहुत सारे नोट्स बनाए, फिर सब नोट्स को मैंने रास्ते में फेंक दिया और मैंने ये सोचा कि मैं यहां आने के बाद जब आपसे मिलूंगा, रूबरू होऊंगा, तब मैं आपसे जो मेरे मन में विचार आएंगे वो आपके सामने रखूंगा। एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। एक कॉलेज में एक प्रोफेसर एक क्लासरूम में गए और उन्होंने एक जार बच्चों के सामने रखा। उस जार में उन्होंने सबसे पहले टेबल टेनिस की जो छोटी बॉल्स होती हैं वो डाली और जब वो जार उन बॉल्स से भर गया तो उसके बाद प्रोफेसर ने बच्चों से पूछा कि क्या ये जार अब भर चुका है। क्लास के बच्चों ने कहा हाँ भर चुका है। उसके बाद उस प्रोफेसर ने उस जार में छोटे छोटे जो कंकड़ हैं उसका एक थैली खोली और उस जार में वो सारे कंकड़ भर दिए। बहुत सारे कंकड़, पूरी थैली उस जार में फिर से आ गई। प्रोफेसर ने बच्चों से पूछा क्या अब भर चुका है। बच्चों ने कहा अब तो भर चुका है, अब इसमें कोई जगह नहीं है। उसके बाद प्रोफेसर साहब ने एक रेत की थैली खोली और उस जार में वो पूरी रेत की थैली उडेल दी, यानी उसमें और भी जगह बची थी। उसके बाद उन्होंने पूछा जार भर चुका है। बच्चों ने कहा इस बार तो जार भर चुका है, अब इसमें कुछ नहीं आ सकता। उसके बाद प्रोफेसर साहब ने एक चाय की दो प्याली ली, दो कप चाय, और उस रेत से भरे जार में दो कप चाय और डाल दी। वो चाय भी उसमें समा गई। फिर प्रोफेसर साहब ने पूछा, अब जार भर चुका है? तब बच्चों ने कहा, हाँ अब जार भर चुका है, अब इसमें कुछ नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने जो बात समझाई वो मुझे आज भी याद है। मैंने इसको कहीं पढ़ा था, ये मेरे मौलिक विचार नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा और मुझे ये हमेशा याद रह गया। और तब उन्होंने कहा कि जार को एक जीवन समझो, और जो टेबल टेनिस की जो बॉल्स हैं वो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। और आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके मित्र, और आपके जीवन में कुछ भी बड़ी चीज जो आपको खुशी देती है। हो सकता है आपको पौधों में पानी देना बहुत अच्छा लगता हो, वो भी आपको बहुत खुशी देता हो। ये वो टेबल टेनिस की बॉल्स हैं। उसके बाद जो छोटे छोटे कंकड़ हैं, तो उन्होंने कहा ये जो छोटे छोटे कंकड़ हैं ये दूसरे नंबर की चीजें हैं, जैसे तुम्हारी नौकरी, जैसे तुम्हारे घर में कार, आपके घर में कोई अप्लायंसेस, आपका मकान, या भौतिक वस्तुएं जिनको आप शायद दूसरी प्रायोरिटी में रखेंगे। और उन्होंने कहा जो रेत है वो रेत बेकार की चीजें हैं, जैसे ईर्ष्या, एक दूसरे से जलना, गुस्सा, या और बेकार की चीजें जिनके ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से बच्चों को समझाया। लेकिन उसके बाद किसी बच्चे ने कहा कि प्रोफेसर साहब ये सब तो ठीक है, लेकिन वो दो कप चाय क्या थी? तो उन्होंने कहा कि वो जो दो कप चाय है वो ये है कि आपका जीवन कितना भी परिपूर्ण क्यों ना हो जाए, आप सब कुछ अपने जीवन में अचीव क्यों ना कर लें, लेकिन अपने प्रिय मित्र के साथ दो कप चाय पीने की जगह जरूर छोड़िएगा, दो कप चाय पीने का वक्त अपने जीवन में जरूर बचाकर रखिएगा। ये वो दो कप चाय है। तो ये एक उदाहरण था जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरे जैसे जो लोग हैं, अगर आप उनको सरलता से कोई बात बताएं, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन का व्यक्ति हूं, मीडिया का व्यक्ति हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं। बहुत बार हम लोग जो कहना चाहते हैं शायद कह नहीं पाते, या तो हमारी भाषा बहुत मुश्किल हो जाती है, या हमारे विचार जब हम प्रकट करते हैं तो वो थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, सब लोगों के लिए समझने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर आसानी से कोई बात समझाई जाए तो वो लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझ में आ सकती है। पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशंस ने एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया था। उसमें 155 देशों को उन्होंने रखा था, और 155 देशों में हमारे देश का जो नंबर था वो 122वां था। यानी खुशी के मामले में, प्रसन्नता के मामले में हमारा देश 122वें नंबर पर है। और सबसे हैरानी की बात उसमें ये थी कि हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान और नेपाल, वो सब इस इंडेक्स में हमसे ऊपर थे। उस सर्वे के मुताबिक हमारे जितने पड़ोसी देश हैं ये सब हमसे ज्यादा खुश हैं, पाकिस्तान भी हमसे ज्यादा खुश है। पिछले बार जब ये सर्वे आया था तो भारत की जो रैंकिंग थी वो 118 थी, उससे पिछली बार आया था तब 115 थी, और जब और पिछली बार आया था तो 112 रैंक थी हमारी। 112 से घटते घटते हम 122 पर आ गए हैं। वजह क्या है, कारण क्या है? सब कुछ तो है हमारे पास। लोग कहते हैं पहले हमारे देश में 2G आया, फिर 3G आया, फिर अब 4G आ गया, सब जगह इंटरनेट आ गया है, आर्थिक असुरक्षा कम होती जा रही है, लोगों के पास भौतिक वस्तुएं बढ़ती जा रही हैं, आज हर किसी के पास अच्छी गाड़ियां हैं, सब लोगों के पास अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स हैं, उसके बाद खुशी क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि एक दिन हो सकता है हम कागजों पर सुपर पावर बन जाएंगे, लेकिन उस दिन जब हैप्पीनेस इंडेक्स आएगा तो हो सकता है हमारा देश और भी नीचे चला जाए। ये एक ऐसी चीज है, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इसको रखती नहीं कभी। किसी राजनीतिक पार्टी में ने अपने मैनिफेस्टो में कभी ये नहीं कहा कि हम ये देखेंगे कि लोग खुश कैसे रहें। हमारे देश में कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस नहीं है। एक अलग मंत्रालय अगर हैप्पीनेस को बनाया जाए तो कैसा रहेगा? कोई फोर्स ऐसी नहीं है जो इस वक्त इस चीज पर काम करे कि देश खुश कैसे रहेगा। और देश ये मोबाइल फोन से खुश होने वाला नहीं है, कारों से खुश होने वाला नहीं है, सैटेलाइट छोड़ने से खुश होने वाला नहीं है। शायद खुशी की जिसको कहते हैं कुंजी, वो कहीं और छुपी हुई है और उस कुंजी को हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मैं कभी कभी कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के पास तो टाइम ही नहीं होता खुश होने का या दुखी होने का। लेकिन जब कभी ऐसे आंकड़े आते हैं तो वो मुझे बहुत दुखी करते हैं। तो आज आप सबके सामने एक प्रश्न छोड़ के मैं जा रहा हूं, और वो प्रश्न यही है कि देश में अगर इतनी आर्थिक तरक्की हो रही है, देश अगर इतना आगे बढ़ रहा है, अगर ज्यादा लोग पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज खुलते चले जा रहे हैं, बिजली सड़क पानी नई नई एयरलाइंस हवाई जहाज तनख्वाहें बढ़ती जा रही हैं, तो फिर हमारा देश खुश क्यों नहीं हो रहा है, और खुश होने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर ये सब कुछ चाहिए होता खुशी के लिए तो शायद आज हम कहीं ज्यादा खुश होते। तो हम सबको इस बारे में विचार करना होगा कि ये देश खुश कैसे हो सकता है, हम लोग एक समाज के तौर पर कैसे ज्यादा प्रसन्न हो सकते हैं। पुरानी फिल्में अगर आप कभी देखें तो पुरानी फिल्मों में जो चीज देखने को मिलती थी कभी उस जमाने में, जो एक आपसी संबंध होते थे, एक पड़ोसी के पड़ोसी से संबंध होते थे, क्लास में जो दोस्त उनके आपस में संबंध होते थे, पिता पुत्र का संबंध होता था, वो सारे संबंध अब कहीं खोते चले जा रहे हैं। संबंध सिर्फ एक जिसको कहते हैं कि एक जैसे जन्म प्रमाण पत्र होता है, बस प्रमाण पत्रों के लिए वो संबंध रह गए हैं। स्कूल में एडमिशन के लिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए संबंध रह गए हैं, आधार कार्ड बनाने के लिए, राशन कार्ड बनाने के लिए और पासपोर्ट बनाने के लिए उन संबंधों की जरूरत पड़ती है, जहां आपको कॉलम भरना होता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिता है, ये मेरे पुत्र हैं और ये मेरा पता है। वो पता आपका भौतिक पता है जहां आपका शरीर रहता है, लेकिन मेरी आत्मा कहां रहती है मुझे नहीं पता। अगर उस पासपोर्ट में किसी ने ये लिख दिया तुम्हारी आत्मा कहां रहती है, तो ज्यादा से मुझे लगता है ज्यादा लोग ये बोलेंगे कि मैं तो जानता ही नहीं मेरी आत्मा कहां रहती है, कभी अपनी आत्मा से मिला नहीं। सो एक बार फिर इस प्रश्न के साथ मैं यहां से ये प्रश्न अपने मन में भी लेकर जा रहा हूं और आपके साथ भी। मेरे पास इसका जवाब नहीं है, और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें एक बहुत बड़ी आर्मी, बहुत बड़ी सेना चाहिए होगी। एक ऐसी सेना के सामने इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने ये मौका दिया। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, आनंदित महसूस कर रहा हूं। इतना काम हो रहा है हमारे देश में, और बिना किसी लोभ लालच के देखकर बहुत खुशी होती है। बस इसको और ज्यादा फैलाना चाहिए, इसको एक एक प्रत्येक व्यक्ति तक ले जाना चाहिए। बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं आप सबको, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप हमेशा प्रसन्न रहें ये कामना करके जाता हूं। धन्यवाद। और बिल्कुल ये जैसा कह रहे हैं, जो प्रसन्नता है मैंने उसको खुद महसूस किया है, यहां आने के बाद जो प्रसन्नता मिलती है वो यही है, ये मैं मान गया। शुक्रिया आपका।
सुधीर भाई ने बहुत सुंदर बातें कही हैं, दो तीन बातें सच में चिंतन के योग्य हैं। आपने कहा कि आगे आने वाला समय रुपए पैसे से नहीं परंतु विचारों से चलेगा, तो विचार भी अपने आप में एक शक्ति है, इसको आप रिकग्नाइज करते हैं, रियलाइज करते हैं। और मैं बताना चाहूंगी ये ईश्वरी विश्वविद्यालय विचारों पर ही फोकस करता है, उसे अधिक से अधिक महत्व देता है। अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो आचार व्यवहार स्वतः बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात आपने जो कही युवा शक्ति की, युवा शक्ति का सदुपयोग, ऐसा ना हो कि वो ज्वालामुखी बन जाए। ईश्वरी विश्वविद्यालय के होते युवा शक्ति ज्वालामुखी तो नहीं बन सकती, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने हमें वो साधन दिया है जिसमें जो ईश्वरी विश्वविद्यालय में आने वाले युवा हैं वो जैसे रचनात्मक कार्य में रहते हैं, ऐसे अगर मीडिया का सहयोग साथ साथ मिलता रहे तो वो चीज सारे भारत में तो क्या सारे विश्व में भी फैल सकती है। सुधीर भाई आपको सहयोग देना होगा। और तीसरी बात जो आपने कही है कि प्रसन्नता को बढ़ाना, ये हम सबका परम कर्तव्य है, हम खुश रहें और औरों को भी खुशी दें। और ये भी विचार की बात है, दिनों दिन हमारी खुशी घट क्यों रही है, तो कुछ और साधन अपनाने की आवश्यकता है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, यदि श्री दीपक चौरसिया जी उपस्थित हैं, आइए आप अपने कुछ विचार देंगे। दीपक चौरसिया भाई हमारे एडिटर इन चीफ इंडिया न्यूज के, भरपूर तालियों से अभिनंदन करिए।
क्षमा चाहूंगा दीदी, जब आपने मेरा नाम पुकारा था तब मैं इतनी मोटी माला के साथ था जिसका वजन मुझसे नहीं उठाया जा रहा था। हालांकि कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है जब इतनी मोटी मालाओं से आपको लाद दिया जाता है और उससे उम्मीद बड़ी बढ़ती है, लेकिन आबू रोड आना अपने आप में एक ऐसा अनुभव है जिसको शायद शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मुझे यहां पर सबसे ज्यादा कोई चीज महसूस होती है तो वो है पॉजिटिव एनर्जी, जिसकी कम से कम दिल्ली में तो बड़ी कमी है। वहां भाई भाई से लड़ रहा है, पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन से लड़ रहा है, पॉलिटिकल पार्टी तीसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रही है, और जो नहीं लड़ रहा है वो इस चिंता में दुखी हो रहा है कि मैं इनसे क्यों नहीं लड़ रहा हूं। बड़ी दिक्कत है, और ये दिक्कत सुधीर अभी हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करके गए, मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारे और हमारे समाज की बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि 125 करोड़ हम लोग हैं, पर इस तरह की टीचिंग, इसमें ईश्वरी विश्वविद्यालय जैसे लोगों की पहल हो और एक पॉजिटिव एनर्जी वाली बात हो, ऐसी जगहें देखने को तो मिलती हैं, लेकिन बड़े समाज में, जिसको कहते हैं कि बहुमत वाले समाज में, वो तनाव बने रहते हैं जिनकी बात हमने हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में की है। वैसे एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हैप्पीनेस मिनिस्ट्री बनाने का फैसला कर लिया है, तो भारत में इसकी शुरुआत हो रही है। अब आदमी, हम जब सर्वे करने जाते हैं ना, पॉलिटिकल सर्वे, तो हमको यही मालूम पड़ता है कि हम पूछते हैं कि आपने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया, तो वो कहता है कि साहब हमने ए पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया। हम ये सोचते रहते हैं कि इसने क्या सही बोला या झूठ, क्योंकि हो सकता है इसने बी पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया हो और बोला हो मुझे ए पॉलिटिकल पार्टी। तो जो दूसरी बड़ी बात है खुश रहने की, वो ये है कि अपने आप से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो और उस परमपिता ईश्वर परमेश्वर से प्यार करो जिसके शक्ति पुंज के सहारे हम अपनी जिंदगी की तमाम पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा करते हैं, उसके सहारे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। मैं अपने जर्नलिज्म के दिनों के एक अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अंडमान और निकोबार में सुनामी आया था, आप सबको पता है, और बहुत बुरी हालत थी वहां की। एक परिवार ऐसा ही फंसा हुआ था, उसका एक सदस्य मुझे रोते हुए एयरपोर्ट पे मिला कि मेरी भतीजी बड़ी मुश्किल से एक आइलैंड के ऊपर, द्वीप के ऊपर फंसी हुई है, आप किसी तरह से उसको बचा लीजिए। मैंने बोला उम्र कितनी है? उसने बोला 6 साल। मतलब माँ बाप क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? उसका कहना था कि बड़ी मुश्किल से उससे थोड़ा सा संपर्क हो पाया है, हमको ये मालूम है कि हमारे भाई भाभी और अलमास का छोटा भाई जो है वो सुनामी के अंदर गुजर चुका है, बह चुका है। हमारे लिए बड़ा सवाल था कि अथॉरिटीज तक अगर बात पहुंचाई जाए तो कैसे पहुंचाई जाए। हमने उसको एक स्टोरी बनाया जो टेलीविजन में हम लोग करते हैं, और उस वक्त मैं आज तक चैनल में काम करता था, और उस स्टोरी के जरिए हमने प्रशासन पर इतना दबाव डाला कि राम कापसे साहब जो वहां के गवर्नर थे वो अगले दिन लेके गए एक हेलीकॉप्टर और उस बच्ची को रेस्क्यू करके वापस लाए। ये हमारा एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन था उस लड़की को बचाने के लिए। 2-3 दिन हो गए, मैं चाहता था उससे बात करूं, फिर मुझे ऐसा लगता था कि वो एक बहुत बड़े ट्रोमा के अंदर होगी, वो क्या सोच रही होगी, उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा। लेकिन हिम्मत करके एक हफ्ते बाद मैंने उसके चाचा से बोला जिसके साथ मैं उस स्टोरी को कर रहा था और कोऑर्डिनेट कर रहा था कि कैसे उसको रेस्क्यू किया जाए। तो उसने बोला कि ठीक है, आप बात कर सकते हैं, उसका मेंटल लेवल अब स्टेबल है, आप भरोसा करेंगे उस 6 साल की बच्ची ने मुझे क्या शब्द बोले। उसका इंटरव्यू की शुरुआत और आखिरी दोनों इस बात से थी कि सर सब कुछ हो जाए जिंदगी में, हिम्मत मत हारना। तो वाकई हिम्मत न हारने की पॉजिटिव एनर्जी यहां पर आकर मिलती है। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरा प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से या इनसे जुड़े संगठनों से नाता आज का नहीं है, मैं जहां पर रहता था, जो मेरा गांव था मध्य प्रदेश में, उस गांव में मेरे घर से चौथे घर पे प्रजापति ब्रह्म कुमारियों वालों का एक सेंटर चला करता था, और वहां पे कई सारी बहनें काम करती थी, भाई काम करते थे, और शहर के कई लोग वहां पर आते जाते थे, और मैं भी उन लोगों में से था जो आता जाता था। लेकिन हुआ यूं कि पढ़ने के लिए बाहर चला गया, और पढ़ने के लिए बाहर ऐसा गया और ऐसी जर्नलिज्म की चकाचौंध में फंसा कि आज तक कभी मौका नहीं मिला है। और मैं आज अपने आप को सबसे ज्यादा लकी मानता हूं, सबसे ज्यादा किस्मत वाला मानता हूं कि मैं आज प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के उस गांव के केंद्र से निकलकर आज आबू रोड पर आपके सामने खड़ा हूं। आखिर जिस हिम्मत न हारने की बात अलमास ने की थी, वो किस हिम्मत न हारने की बात है? वो किस तरह का संदेश देना चाहती थी? जो माउंट आबू का यह आश्रम है, आबू रोड का यह आश्रम है, या माउंट आबू में जो हमारी स्थापना है, या फिर 133 से 134 देशों में जो छोटे छोटे और बड़े बड़े संगठन ब्रह्म कुमारी के काम कर रहे हैं, वो हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में बंद कमरे में छोटा सा रोशनदान है। हमको उनको खिड़कियों में बदलना होगा, हमको उसके दरवाजे खोलने होंगे, तभी हम सुखी रह पाएंगे। और वाकई मैं ये बड़े जिम्मेदारी के साथ करना चाहता हूं, अपने पूरे एहसास के साथ कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर जितनी स्पिरिचुअल अपीलिंग है वो दुनिया में कहीं नहीं है। मैंने दुनिया के हर एक एक कोने को देखा है, लेकिन जिस तरह का ज्ञान, जिस तरह का इतिहास, जिस तरह का लिटरेचर, जिस तरह का कल्चर, जिस तरह की माइथोलॉजी भारत के अंदर है, मेरे ख्याल से वो कहीं नहीं है। अंत में इतना ही कहूंगा कि 80 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, दादी जानकी जैसे लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, न जाने कितनी ऐसी बहनें होंगी और भाई होंगे जो अपना सब कुछ सर्वस्व यहां पर न्यौछावर कर देते हैं इस आंदोलन के अंदर, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर। मैं ये चाहता हूं कि इसकी जो भी टीचिंग्स हैं, माता दादी जानकी जी से कहूंगा कि मेरा ये सुझाव है, कम से कम इसकी जो भी स्पिरिचुअल हीलिंग की टीचिंग्स हैं उसको किसी यूनिवर्सिटी से साथ जोड़ा जाए, उसका बकायदा एक सर्टिफिकेट दिया जाए, ताकि जो आदमी बाहर और आगे समझाने जाए उसके पास एक बेस है, उसके पास एक महत्व है, उसके पास एक सर्टिफिकेट है जो ये बताता है कि हाँ इस किस तरह की स्पिरिचुअल हीलिंग एक ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से निकला हुआ भाई या बहन सिखा सकती है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कदम होगा। खुशी क्या है? खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है कि आज की तारीख में मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, मैं खुशी हूं या दुखी हूं। वो ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से एक ग्लास है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। अगर आधा ग्लास भरा हुआ है तो आधा ग्लास पानी से भरा हुआ है, और आधा ग्लास मेरे हिसाब से खाली नहीं है, उम्मीद से भरा हुआ है। तो अगर आप उस उम्मीद की पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लाकर कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसकी स्पिरिचुअल हीलिंग ब्रह्म कुमारी जैसे ऐसे इंस्टीट्यूट से निकलती है, जिसकी लाइट निकलती है, जिसमें बताया जाता है कि आत्मा और परमात्मा के साथ आप सीधा संबंध किस तरीके से रख सकते हैं, जिसमें दो मिनट के मेरे ख्याल से मेडिटेशन के अंदर आपको एक अपार संतुष्टि और अपार संतोष का अनुभव होता है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को मैं सलाम करूंगा। उम्मीद करूंगा कि माउंट आबू से, आबू रोड से मेरा ये नाता हमेशा के लिए बना रहे, मैं इससे जुड़ा रहूं, क्योंकि टेलीविजन जर्नलिस्टों की दुनिया के अंदर आखिरी चीज होती है कि आप स्पिरिचुअल हीलिंग या स्पिरिचुअलिटी की तरफ कहीं चले जाएं, क्योंकि हमको दिखता है मार धाड़ बलात्कार युद्ध वॉर पाकिस्तान हिंदुस्तान बांग्लादेश दुनिया भर की ऐसी चीजें। तो हमको हमारे लिए, मैं तो बल्कि ये कहूंगा दीदी से कि आदरणीय दीदी, अगर आपके पास दिल्ली में कभी वक्त हो तो हम ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश करें टेलीविजन के कुछ जर्नलिस्टों के लिए कि आप वाकई उनको हीलिंग सिखाएं। अगर ऐसा कोई कार्यक्रम बने तो हम उसमें पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। अंत बात में मैं सिर्फ इतनी ही कहना चाहूंगा कि एक बहुत पुराना श्लोक है संस्कृत का, वो ये है कि विद्या ददाति विनयम, विनियम दयाति पात्रताम पात्रता धनानोति धनात् धर्मम तथा सुखम। हम सब लोग सुख के लिए घूमते हैं, सुख के लिए भटकते हैं, और अब उसी हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर दी। लेकिन अंत में एक जोक के साथ करूंगा। मुझे बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर ने इस जोक को सुनाया था। वो ये था कि एक आदमी शहर की चौपाल पर बैठा हुआ था और वो आराम कर रहा था, भरी दोपहरी में बढ़िया आराम, नीम के पेड़ के नीचे चद्दर तांग के सोया हुआ था। तो वो लीडर उसके पास जाते हैं, उसे पूछते हैं कि भाई इस टाइम पे आराम, ये आराम तो तुमको शोभा नहीं देता। तो उसने बोला बताइए साहब क्या करूं। बोले क्या करते हो। बोले किसान हूं। बोले अभी खेती कौन करता है। बोले बटाई पे दे दी साहब, 50-50 के उसमें दूसरा आदमी खेती करता है। बोले फिर। बोले फिर क्या साहब, मैं आराम कर रहा हूं अपना। बोले नहीं, तुम अपनी खेती खुद करो। बोले साहब उससे क्या होगा। बोले जब खुद खेती करोगे तो पैदावार बहुत अच्छी होगी। बोले फिर क्या होगा साहब। बोले पैदावार अच्छी होगी तो उसकी कीमत अच्छी मिलेगी। तो उसने बोला फिर क्या होगा साहब। बोले कीमत अच्छी मिलेगी तो लड़कों को अच्छे स्कूल में तुम पढ़ा सकते हो। बोले फिर क्या होगा साहब। बोले उससे उनका भविष्य संवर जाएगा। बोले फिर क्या होगा साहब। बोले उससे तुम बहुत खुश रह सकोगे। तो उस आदमी ने नेता को जवाब दिया, तो अभी क्या कर रहा हूं सर। तो हमें अपनी हैप्पीनेस की परिभाषा को, हैप्पीनेस के स्वरूप को, हमारे स्पिरिचुअल जो शरीर है उसके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है उसको पॉजिटिविटी में, पॉजिटिव एनर्जी में कैसे बदलें, मेरे ख्याल से ये हमारा गोल है। और यही समझाना, इसी को प्रसारित करना, इसी को आगे बढ़ाना ईश्वरी ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय और ब्रह्म कुमारियों का संकल्प है। और मेरा इस संकल्प में हम अगर छोटी से छोटे तिनके से तिनके वाली भागीदारी बनाएं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा। दादी जानकी को से आशीर्वाद देते हुए, वो अभी मंच पे नहीं है लेकिन उनके आशीर्वाद की कामना करूंगा। आप सबका धन्यवाद जितने भी लोग मंच पर बैठे हुए हैं। और मुझे यही लगता है हर सम्मान लेने के बाद, हर फेलिसिटेशन लेने के बाद कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, ये बात मैं पुनः यहां पर दोहराऊंगा। लेकिन आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, मुझसे बात करने का मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई, आपने जो रिक्वेस्ट रखी है कि ऐसा कोई कार्यक्रम दिल्ली में रखा जाए जिसमें मीडिया जगत के भाई बहने मेडिटेशन का अनुभव करें, वो कार्यक्रम हम अवश्य रखेंगे और आपको उसमें अवश्य आना होगा। हमारे मध्य उपस्थित हैं मीडिया जगत के गणमान्य व्यक्ति जो केवल इस कार्यक्रम के लिए ही पधारे हैं। हम अवश्य उन्हें सुनेंगे। कोई चेन्नई से आया है, कोई केरला से आया है। मैं समझती हूँ हमारी सभा थोड़ी देर और बनी रहेगी और हम उनको अवश्य सुनेंगे। सबसे पहले मैं इनवाइट कर रही हूँ श्री के वैद्यनाथन जी, चीफ एडिटर दिनमणि, काइंडली ग्रेस दी स्पीकर डेस्क एंड एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन द सब्जेक्ट।
ओम शांति। ऑन वन साइड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट आई हैव बीन एबल टू एड्रेस दिस ऑडिटोरियम विदाउट पिलर एंड टू बी इन यूर मेस। एट द सेम टाइम इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट आई एम अनएबल टू कम्युनिकेट इन हिंदी एंड take home to your heart my thoughts. Rajyogini Asha Ben, when she introduced the gathering here, she said, today we are 80 years old, 80 years old and 80 years young. She is very much right. We are 80 years old in upholding values of our culture and 80 years young in our spirit. 80 years is no mean thing. When you say 80 years in life, it means 1001 Purnimas in your life. 1001 Purnima becomes 80 years. And any one personality with 1001 Purnima, if they just see you, it is called Diksha, Drishta Diksha, they call. Drishta Diksha, where just they see you, a person who has completed 80 years, all your sins vanish. And here, we are here, 80 years of an organization, and for all our births, all our sins are washed away with our very presence in this august auditorium. We are really blessed. And more than that, in the august presence of Dadi Janaki Ji and Dadi Hriday Mohini Ji, you know, it is a spiritual aura that engulfs this area, and this is a proud occasion for one and all, for an organization that is there for 110 countries and more than 10 lakh people every day morning reciting the same dhyan. It is no mean achievement, and to be here on this great occasion and to be in your midst, it's really a great pleasure and privilege. I thank you one and all, and my pranams to Dadi Janaki Ji and Dadi Hriday Mohini Ji and all the Raja Yogis and Raja Yoginis of this great organization. Thank you.
Thank you, brother. और अब मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रदर रघुरामचंद्रन जी, चीफ एडिटर, सॉरी चैनल हेड एशियानेट चैनल, काइंडली कम एंड एक्सप्रेस योर व्यूज. हमारे मध्य गुलाब कोठारी जी, जो कि मीडिया जगत के एक बहुत विशिष्ट नक्षत्र हैं, उपस्थित हैं. आपकी वेदों के बारे में काफी आपका अध्ययन है, कई किताबें लिखी आपने, संस्कृति और साहित्य की अच्छी पकड़ है, इसके साथ ही समाज सेवा में भी आप भागीदार हैं. राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र के चेयरमैन और प्रधान संपादक हैं. आपका अभिनंदन हुआ परंतु अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, ऐसी हस्ती का भी हम करतल ध्वनि से स्वागत और अभिनंदन करेंगे. ब्रदर रघु रामचंद्रन जी केरला से आए हम सबके मध्य में और उनको तुरंत जाना है. और उसके बाद एक और हमारे बीच में है मीडिया पर्सन, उनको भी तुरंत ही लौटना है. तो आप सब थोड़ा सा धीरज रख करके जो भाई इतना दूर से आए हैं उनको प्यार से सुनेंगे. ब्रदर रघु रामचंद्रन,
सबको मेरा प्रणाम. जैसे पहले इधर श्री पीजे कुरियन जी ने बताया था, मैं भी उनकी तरह केरला से हूँ और हिंदी में मेरा प्रवाह अच्छा नहीं है, इसलिए आप सबकी अनुमति लेती हूँ अंग्रेजी में बोलने की. स्टैंडिंग ऑन दिस डायस फेसिंग दिस लाइव गैदरिंग, आई फील ब्लेस्ड. सिंस वी आर वेल पास्ट इन टू द लंच टाइम, आई विल नॉट टेक लॉन्ग. A recognition from Prajapita Brahmakumaris Vishwavidyalaya is indeed a movement well known for upholding moral values and spiritual tradition is indeed a great honor to me. The world today is menaced by violence. Even the media today, I too am a part of it, whether it is news or current affairs or a fiction or a movie, is all filled with violence. It sees power and authority as being far more important than sensitivity to human life. The society is chaotic. Values and mutual trust have disappeared. Everybody fights for freedom, but none of us realize that freedom beyond limits is unbecoming of a society that claims to be cultured. The limit of individual freedom has to be set by the person himself, whether it be man or woman. Everybody fights for his rights. But only those have the right to fight for their rights who discharge their duties and responsibilities to their family, society, and the nation as a whole. I believe the Prajapita Brahmakumari's Vishwavidyalaya can create awareness on moral and spiritual, in moral and spiritual values, and thereby on the duties and responsibilities among people. The world really took a turn after the launch of internet and mobile phones. Earlier, a 9-to-5 job, and you are free after that. You had enough time to unwind yourself from all the pressures of your work. But today, after the mobile phone, you are on duty on 24 hours and 365 days. So at this juncture, it is at most important to maintain your life-work balance. That's where meditation and yoga comes into play. I think the Brahmakumaris can also convince the younger generation how moral values are essential for man-making, nation-building, and establishment of peace in the world at large. Pranams to all of you once again.
अब हमारे मध्य में आ रहे हैं ब्रदर आर भगवान सिंह जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर डेक्कन क्रॉनिकल चेन्नई.
ओम शांति. I have an audience that's about one third or maybe one fourth of what it was in the morning, and on the dais maybe one fifth, and the lunch is just waiting for you, and I'm sure that I am not supposed to take much of your time. I just want to make three important points here. One is that somehow, and my name is Bhagwan Singh, as you have seen. My great-grandfather migrated from Bundelkhand to Tamil Nadu's Madras. And I was born and brought up in Madras. We speak a kind of Hindi at home. My wife is a Kannadiga, and my son married a Tamil girl. And I have been a journalist for about 40 years. I have seen the world. And I've observed in India, even among my colleagues, friends in Delhi, south of India's hardly exists for those up north. We have a political system, a political culture, a political party called the Dravidian. It's a Dravidian political system where the fathers of this political system came to power by peddling just one slogan, which said, North is growing, South is fading. We are being neglected. I'm so happy, I feel divine being here on this dais of Brahmakumaris, 8 years old. I have been to your solar plant, your solar kitchen, hugely impressive. And I wish that Brahmakumaris will focus a little more down south, particularly in places like Tamil Nadu, where, now I'm coming to a serious issue. People spoke of spiritualism here. I do not know how many of you are aware, and my colleague, my friend here, Vaidyanathan, who is a very senior journalist, will back me on this. Spiritualism, it is taboo in Dravidian Tamil Nadu. Spiritualism is often mistaken, or perhaps it is not mistaken, as being hugely religious, as being a Brahmanical conduct, behavior. And so, the Dravidian politician, the Dravidian sociologist opposes that. And we have seen what is happening because of that. the drying of spiritualism in my state, the shunning of spiritualism in my state, what has it led to? It has led to, I do not want to speak politics here, but I suppose politics is something that is inalienable from everybody's life. It is a politician, unfortunately, who is ruling you and me. And in my state, where spiritualism is a bad word, we have got politicians who have been confirmed guilty of corruption, high corruption, sentenced to jail by the Supreme Court of India, the highest court. And we have an election happening, a by-election happening 1 week, 10 days from now. But their pictures are on the posters by the candidates who they have propped up for contesting, proudly saying, we belong to their party. And people accept that. At least people are not protesting that. My appeal to Brahma Kumaris on this occasion is that do not insulate yourself in your cocoon of spiritualism. You may be 80 years old, several countries, a hoary tradition, but step into the common man's gutter. Sometimes it is necessary. As a media person, I'm appealing to you. To clean up society is not just the work of sociologists, the work of teachers. The spiritual leader has a great role to play. This is what our forefathers did. This is what people in Takshila and Nalanda did. This is what Shankaracharya did. Kindly come down. Come down to South, come down to Chennai. I know you have a center in Chennai. I know you have centers in Tamil Nadu, down South. But try to talk to the people, the common man, and tell him what is of value in social life, in public life, that he should question a leader, a ruler, when he digresses, when he distracts, when he goes astray. He should stop him and ask him, why are you doing this? If this is not going to happen, Ravina Tandon was telling just before me, she has two children and she's worried what is going to become of them when they grow up. And thanks to organizations like Brahma Kumaris, I'm happy, I'm comfortable that they are safe. Please make us also comfortable. Thank you very much for this opportunity. God bless you.
थैंक यू ब्रदर. आप सबको अपने अपने वक्तव्य को बहुत शॉर्ट करना पड़ा है. इस चीज को हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप इतना दूर से आए हैं. और अब मैं हमारे मंत्री महोदय श्री आमरण राम, मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. आप जानते हैं राजस्थान के लोग राजपूत जो कभी पीठ नहीं दिखाते, कठिनाइयों में रहना जानते हैं और इकोनॉमी से चलना जानते हैं. आमरण राम जी का संस्था से पुराना परिचय है. अधिक समय न लेकर आपसे निवेदन करूंगी आप अपना वक्तव्य.
सबको मेरे प्रणाम. प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 80वें वार्षिक उत्सव पर अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन एवं संस्कृति महोत्सव जो बड़े धूमधाम और हर्ष उल्लास से मनाया जा रहा है, इसमें आज हमारे बीच में दादी जो जयंती बाई बैठी है और हमारे खास जो प्रजातंत्र का स्तंभ है मीडिया, राजस्थान पत्रिका के प्रमुख आदरणीय गुलाब जी कोठारी साहब और दो हमारे लाडले और अजीज मेहमान जो तमिलनाडु से आए हैं, मीडिया के स्तंभ है हमारे बहुत ही मुख्य अतिथि और अन्य अतिथिगण यहां से पधार गए हैं और आप लोगों को भी बड़ी भूख लग रही होगी, लेकिन मेरी जो बारी है जब लेट आई है, एक बार ऐसा हुआ मैं कहीं समारोह में था, मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया तो सब लोग उठ उठ के बाद में भाषण देके चले गए। वहां पर दो आदमी बैठे, मैंने कहा खैर ठीक है, अब दो आदमी तो मेरे लिए बैठे ही हैं, तो मैंने कहा भाई आप दो आदमी हो, मैं अपना भाषण दे रहा हूं। उन्होंने कहा मैं एक तो दरी उठाने वाला हूं और एक माइक को उठा के ले जाने वाला, कोई बात नहीं, अब यहां दो की संख्या नहीं सैकड़ों की संख्या है। देश और विदेश में पहुंचे सभी माननीय जो हमारे भारत के कोने कोने से जो आए हैं, उन सबको इस राजस्थान की भूमि पर मेरी ओर से और राजस्थान सरकार की ओर से उनका बहुत बहुत बहुमान अभिनंदन स्वागत। ये वार्षिक उत्सव परमात्मा के अवतरण का 80वां जन्मदिवस है। बाबा दादा ने हम सबको शिक्षा वरदान शक्तियों और गुणों से भरपूर किया। परमात्मा के असीम स्नेह और प्रेम को रिटर्न करने का यह स्वर्णिम अवसर है। भाइयों, ये जीवन क्षणभंगुर है। किसी ने कहा है कि हाड़ जले जू लाकड़ी, अरे केस जले जू घास, सब जग जलता देख करके कबीरा भया उदास। इस जीवन का एक दिन ऐसा ही हश्र होने वाला है, इसीलिए आप भाई आपस में प्रेम रखें, यही जो हमारे ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय का संदेश है। बाबा ने भी यही कहा था, प्रतिशोध का बदला प्रतिशोध से नहीं लिया जा सकता, प्रतिशोध से सदा ही करुणा से संत होता है। संतगण कहते हैं प्रतिशोध से बढ़कर कोई जहर नहीं, जगत में चंदन शीतल है और उससे भी ज्यादा शीतल है चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा और चंदन से भी अधिक शीतल है, ऐसे हमारे पत्रकार बंधु, हमारे महापुरुष और ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उनके संग व संगत से बनते हैं। यह मनुष्य जीवन अनमोल है, इसकी प्रेरणा हमें यहां मिलती है। इन भाई बहनों का एक ही लक्ष्य है कि समय व्यर्थ न खोकर ऐसे महापुरुषों की संगत कर असीम अनंत परमात्मा को प्राप्त करें। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी की कविता का शीर्षक है कि जीवन बीता चला, जीवन बीता चला, और उनकी कविता इस प्रकार है, अरे कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, अरे भूत भविष्य की चिंता से वर्तमान की बाजी हारे, पैरा कोई काम न आया, पैरा कोई काम नहीं आया, रसगढ़ रीता चला जीवन बीता चला, हानि लाभ के पर्णों में तुरता जीवन व्यापार हो गया, मोर लगा बिकने वालों का बिना बिका बिकार हो गया, मुझे हाट में छोड़ देना अकेला, एक वाह एक एक कर मीत चला जीवन बीत चला। यह जीवन है, क्षण भंगुर है, जाने वाला है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दादी जी ने कहा कि अपने बुरे कर्म दूसरों से छिपा सकते हैं, पर आप परमात्मा से नहीं छिपा सकते। हमें ऐसा लगता है कोई देख नहीं रहा है, सदा हमें वो परमात्मा देख रहा है, तो हम बुरे कर्म क्यों करें। इस विश्वविद्यालय में आने के बाद व्यक्ति की सोच बदल जाती है, हम सबके प्रति शुभ भावना एवं स्वर की भावना हो, क्योंकि यहाँ का वातावरण इस प्रकार का है। चिंता छोड़ो और चिंतन करो, इस वातावरण में व्यर्थ विचार ठहरते नहीं, भाग जाते हैं। अरे बीती को बिंदी लगाओ, सारी नदियां एक सागर में मिल जाती है, फिर हमें नदियों के पास क्यों जाएं? हम ज्ञान सागर के पास जाएं, सबके जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है। फर्क इतना ही है कि किसी के समझ में जल्दी आता है तो किसी के बाद में। घर जाने का रास्ता सीधा रहेगा तो टेढ़े रास्ते में क्यों जाएं? इस विश्वविद्यालय ने आने के बाद इन भाई बहनों में जो परिवर्तन आया है, वैसा ये विश्वविद्यालय पूरे राष्ट्र पूरे विश्व में परिवर्तन निश्चित ही आना है। यह विश्वविद्यालय व्यक्तित्व का एवं चरित्र निर्माण का कार्य कर रहा है। जहां पर इस प्रकार का वातावरण है, उनकी सोच और समझ में परिवर्तन आ रहा है। भाइयों, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि जीना मरनो जीवरो, कोई जन्मता ही मर जाए, जो नर जग में अमर है जो कुछ कर जाए। इस प्रकार का ये काम जो हमारे ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में हो रहा है, आज दुनिया में ऐसे कोई इस प्रकार की संस्था नहीं है। अडवाणी जी ने भी कहा इस संस्था की प्रमुख हमेशा जो है महिला रही है, महिलाओं ने इस संस्था को आगे बढ़ाया है। मुझे तो 80 साल के बाद में ये संस्था जब खड़ी हुई है उसके बाद में ये आगे बढ़ती रही है, इसमें कोई कमी नहीं आई, कोई आपस में विवाद नहीं हुआ। इतनी अनुशासन, एकता, भाईचारा, प्रेम भाई और बहनों के अंदर है, यह एक तपस्या कहना चाहिए कि धरती है, तपोभूमि है, ये सिरोही एक देवभूमि है। और यहाँ पर जो इस प्रकार के जो यहाँ इतने बड़े विशाल जो इस जन समूह के अंदर आज जो ये वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ हमारे भारत के उप प्रधानमंत्री आदरणीय लाल कृष्ण जी अडवाणी जी ने किया है, और इस मौके पर मुझे भी जो है आमंत्रित किया, उसके लिए मैं इस संस्था का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जो सम्मान हमेशा दिया, जो प्रेम दिया, आदर भाव दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यहां आकर के लोग अपना सब कुछ भूल जाते हैं, मोह माया सब भूल करके एक ही उनमें है दिल के अंदर, कि शांति कैसे मिले। लोगों को नींद नहीं आती है, लेकिन यहां आने के बाद में वो सब भूल जाते हैं, धन माया सब भूल जाते हैं। इसलिए भाइयों, आज अपने विचारों को बदलना सीखो, और अपने विचारों को बाहर से नहीं, जब तक हम अंदर से विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक शांति स्थापित नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है मुझे सुना। मैं पुनः जो है आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता अमरा राम जी, अपने अपने अनुभव युक्त बात हम सभी के बीच में रखी। अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ पूर्ण करने से पहले आज के मंचस्थ महानुभावों का ब्रह्मा कुमारी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज इस मंच पर राजकीय भाई और बहनों के साथ साथ हमारे मीडिया जगत के भी दिग्गजों ने इस अनुभव को अपनी वाणी से हम सबको बताया। अब हम सभी उस परमपिता परमात्मा दिव्य स्रोत को 2 मिनट याद करके, परमात्मा को याद करके इस कार्यक्रम को यहाँ पूरा करके जाहिर करते हैं। ओम शांति।
सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।